अल्लाह ने इसीलिए फरमाया लियद्दक्करू, इसलिए हम फेरते हैं ताकि ये खुद सबक सीखें। और ये भी मुराद है ताकि वो जिक्र करें, यानी अपने रब को याद करें। लेकिन याद करना कितना होता है? जब बारिश को अल्लाह फेर फेर के लाता है, आप मुझे खुद ही बताएं ना कि जब मौसम बदलता है, किसी दिन बारिश आई, बारिश होती है तो क्या होता है? अब यहाँ पे तो इतनी हो जाती है, मेरे ख्याल में बारिश की नेमत का भी एहसास नहीं है, उसको रहमत ही नहीं समझते। लेकिन फिर भी चलें, गर्मियों के दिन में आप सोच लें, बारिश हो जाती तो क्या होता है? हम क्या करते हैं? आज पकवान पकाएं और गज़लें लगा लेंगे, म्यूज़िक लगा लो, चलो आ जाओ पार्टी करें, गीत गाएंगे, कोई सावन के, कोई फलाने को याद करने के, और बड़ी सैड मेमोरीज शुरू हो जाएंगी। और ये कितनी दफ़ा हम अल्लाह को याद करते, अगर कोई कुछ कह ही दे, ज़्यादा कुछ नहीं भी ये करता तो वो ये कह देगा कि हाँ बस देखो ना, आज की फोरकास्ट थी ये कि बारिश होनी थी और मौसम में ये तब्दीलियाँ हैं, तो इसलिए अल्लाह का जिक्र करना तो भूल ही जाते हैं कि उसकी रहमत है। इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे शिकवा किया, फअबा अक्सर उन्नासी इल्ला कुफूरा। अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर लोगों की आदत क्या है कि वो नाशुक्री करते हैं, नाशुक्री के सिवा, और हर रवैये का इनकार कर दिया अक्सर लोगों ने। अक्सर लोगों को शुक्रगुजारी नहीं याद रहती, उसका भी इनकार है, उस सबक लेने का भी इनकार है। करना है तो क्या करना है? ना शुक्रिया। सबक लेने की बजाय, अल्लाह का जिक्र करने की बजाय, उसको याद करने की बजाय, सिर्फ रह क्या जाता है? मौसम के शिकवे शिकायतें। आप तो नहीं ना शुक्री करते? ना शुक्री क्या है? ना शुक्री करना, ना शुक्री क्या चीज़ होती है? जब हम एतराज़ करने लगते हैं, जब हम राजी ही नहीं होते, जब हम शिकवे शिकायतें करते हैं, तो क्या होता है? वो नाशुक्री नहीं होती? आई ये क्यों आज हो गई बारिश, आए वाए, और देखो इतना डिप्रेसिव सा तो माहौल हो गया है, और देखो ज़रा ये क्या आज सारा हर तरफ गीला हो गया है, और इतना मगी है, और फलां है, और बारिश ने हमारा तो सारा पिकनिक का प्रोग्राम ही ख़राब कर दिया ना। मैं तो ये समझती हूँ, जब भी हम किसी भी मौसम की शिकायत करते हैं ना, वैसे आप कहें कि हाँ आज बारिश हो गई, या आप कहें कि आज गर्मी है, या कोई आपने तबसरा किया उसके ऊपर, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन एक होता है एतराज़ वाला तबसरा, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया। कभी भी हम मौसमों पे सेटिस्फाइड नहीं रहते, हाय हाय आज तो सर्दी इतनी हो गई, ओहो गर्मी कितनी ज़्यादा है। तो हमेशा मैं ये कहती हूँ कि देखें, ये ज़मीन किसकी है? किसकी है ज़मीन? अल्लाह की है। इस पे जो कुछ भी है वो किसका है? अल्लाह का है। यही कह रहे हैं ना आप। आसमान किसका है? अल्लाह का। ये मौसम किसके हैं? अल्लाह के। हम किसके हैं? अल्लाह के। ये सारे जानदार चौपाए, जिन्नो इंस, सब किसके हैं? बेजान चीज़ें किसकी हैं? अल्लाह की। तो क्या उसकी मर्ज़ी ना चले? आपसे पूछा जाए कि आज जी क्या मौसम होना चाहिए, जिस पे आप राज़ी हैं वो ही होगा आज। हम और आप कौन होते हैं कि वो ये कहें, मौसमों पे एतराज़ करें, क्यों आज क्यों ये हुआ, ऐसा क्यों हो गया? भाई जिसका ये कारखाना है, कुदरत है, वो चाहे तो बारिश बरसाए, वो चाहे तो खुश्की कर दे, वो चाहे तो सर्दी हो जाए, वो चाहे तो गर्मी हो जाए, मर्जी तो उसकी चलनी। आप पर मैं क्यों एतराज़ करने के मिजाज रखते हैं? लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया अक्सर लोग इनमें नाशुक्रिया करते हैं। बारिश हो तो भी मुश्किल, अगर ना हो तो तब भी मसले, आए बारिश नहीं हो रही, आए खुश्की पड़ गई, हाय हमारी तो घास ही जल गई है। तो हर वक्त हम अगर देखें ना, तो ना शुक्री की बातें ज्यादा हैं। हम तो कफूरा में शामिल नहीं हैं। सबक बजाय लेने के, शुक्र गुजारी के, राजी होने के, अल्हम्दुलिल्लाह कहने के, अब देखिए, जैसे मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया था कि सर्दी है, तो आपने ये कहना है अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ुबिका मिन बर्दी ज़महरीर। गर्मी है तो फिर नारे जहन्नुम से आप पनाह मांगे, तो जब आप कह सकते हैं ये, क्योंकि उस हदीस में है कि एक इंसान कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह आज कितनी गर्मी है, और फिर उसके बाद अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ुबिका मिन नारे जहन्नम मिन हर्री नारी जहन्नम, वो ये कहता है। फिर एक इंसान कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह आज कितनी सर्दी है, और फिर ये कहता है अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ुबिका मिन बर्दी ज़महरीर। तो अल्लाह ताला उनको गवाह बना के कहते हैं जहन्नम को, और कि तेरे इन तबकों से ये पनाह मांग रहा, तो मैंने इसको पनाह दे दी। तो हम जब उसके ऊपर तबसरा कर रहे होते हैं, रहमत की बारिश हो रही है, तो आप अल्लाह से दुआएं करें, शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला बारिश हुई। लेकिन अक्सर ही लोग ना शुक्रिया, हर वक्त ना शुक्रिया। मौसम तो ऐसे लगता है कि जैसे वो मौसम का आना जाना बदलना हमारी मर्जी से बस होना चाहिए। हम हर वक्त ही अनकंफर्टेबल रहते हैं मौसम के, कोई ही दिन होता है कि हम बस खुश हों और कहें कि कितना अच्छा मौसम है, लेकिन उसमें भी कहेंगे कितना अच्छा मौसम है, और उसके बाद बस कोई शुक्रगुजारी नहीं, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं। भाई बात यह है कि जब हमारी मर्जी की चीज़ हो तब तो सभी खुश होते हैं, बात तो तब है कि जब अल्लाह की मर्जी की हो, आपकी मर्जी ना भी उसमें शामिल हो, तो आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है। बात तो तब है, बंदे तो तब हैं आप अल्लाह के, तो आपकी मर्जियों की होने लगे सारी चीज़ तो फिर तो आसान ही है ना। देखते देखना तो यह है कि आप उस वक्त कितने राजी होते हैं जब मर्जी आपकी नहीं है, अल्लाह की है। ये मौसम किसकी मर्जी से बदलते हैं? अल्लाह की मर्जी से बदलते हैं, और जब आप इन पे राजी नहीं होते तो अल्लाह की रजा पे नहीं राजी हो रहे। दुआ जरूर मांगे, उसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन शिकायतें, एतराज, शिकवे, हाय वाय करना, क्यों ऐसा हो गया, आज ही होना था, हेलो बारिश को भी आज ही होना था, तो वो किसने की है बारिश, ये नहीं आप सोचते, किस पे एतराज़ कर रहे हैं। तो इन जुमलों को हमें अपनी ज़िंदगी से निकालना है, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। देखिए ये फुरकान है ना, कैसे हमें बताता है, एक एक बात, एक एक चीज़ हमें कैसे, सुभान अल्लाह। हर जो सूरह है उसका नाम भी कितना प्यारा है ना, अभी हमने सूरह नूर पढ़ी, उसने नूर दिखाया, फिर फुरकान है, ये फ़र्क करना सिखा रही है। फ़ला तुतिअल काफिरीन वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, तो ना तुम इताअत करो काफिरों की, काफिरों की मर्ज़ी पे नहीं चलना। क्यों, काफिर क्या कहते थे काफिरों का, कि मुखालफत थी ना, वो मुखालिफ थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये हक का पैगाम देने में मुखालिफ थे, कि इसको छोड़ दें आप, बस ये ना हमें सुनाए, इनकी नहीं बात आपने सुननी, बल्कि क्या करना है, वजाहिदहुम, और इनसे जिहाद करें। और जिहाद मैंने आपको क्या बताया, क्या चीज़ है, यानी एक मुसलसल मेहनत, कोशिश, जद्दोजहद, स्ट्रगल करें, बिही इसके ज़रिए, साथ इसके, किसके, इस कुरान के, इस कुरान के ज़रिए आप इनके साथ जिहाद करें। और कैसा जिहाद, जिहादन कबीरा, बहुत बड़ा जिहाद। बड़ा जिहाद का मतलब क्या है, यानी जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो भी सलाहियतें, जितना कुछ भी आप कर सकते हैं, उसको लेकर, उसको यूज़ करके, उसको यूटिलाइज करके, आप इस कुरान के ज़रिए स्ट्रगल कीजिए। और जिहाद क्या है, कोई एमलेस एफर्ट का नाम नहीं है, बल्कि आपका एक मकसद होना चाहिए, इन तक पैगाम पहुंचाने के लिए स्ट्रगल करें, कोशिश करनी है कि दुनिया के हर हर इंसान तक इस कुरान को पहुंचाना है। अच्छा, मैं एक आयत मेरे ख्याल पीछे छोड़ गई हूँ, वलौ शिना लबासना फी कुल्ली करियत नज़ीरा, और अगर हम चाहते, अलबत्ता हम उठाते हर बस्ती में एक डराने वाला। अगर हम अल्लाह ताला का इज़न होता तो जैसे पहले पैगंबर आया करते थे ना, एक ही वक्त में एक जगह पे एक पैगंबर है, दूसरी जगह पे दूसरा है, तीसरी पे तीसरा, एक ही ज़माने में कई पैगंबर दुनिया में मौजूद होते थे, तो अगर अल्लाह चाहता तो इस तरह कर देता। लेकिन अल्लाह का फैसला किया कि अब एक ही नबी कयामत तक के लिए इन्हीं की शरीयत चलेगी और यही काफ़ी है। और ये इस चीज़ की भी दलील है कि अब आपके बाद कोई नबी नहीं आना, आपके वक्त में भी कोई नबी नहीं था, इसलिए क्यों, वरना तो फिर उनकी कौम उनको मानती, लेकिन आपको अल्लाह ने सारे इंसानों के लिए बना के भेज दिया, अब किसी और नबी को उसके बाद या उस वक्त में कोई नहीं मानेगा, क्योंकि कोई और नबी नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए बन गए नबी और आखिरी नबी। अब के बाद जो भी इंसान आएगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद, जो भी इंसान आएगा वो आपके ऊपर ही ईमान लाएगा, और कोई नबी नहीं था ना उस वक्त में ना उसके बाद। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि अब अल्लाह का फैसला ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हक का पैगाम देने का जो काम था वो आपकी उम्मत करे। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसने किया था? कौन ले लेके सारी दुनिया में घूमा और कौन ले लेके इस पैगाम को फैल गया? सहाबाए कराम, और उसके बाद फिर ताबेईन, फिर उसके बाद वाले, फिर उसके बाद वाले, और फिर इस उम्मत के हर फर्द के ऊपर है कि वो जिस जिस जगह पे भी है जो कुछ भी कर सकता है, फिर वो क्या करे, इनकी नहीं परवाह करे कि लोग क्या कहते हैं और वो क्या मना करेगा और वो क्या कहेंगे और उनकी क्या मर्जी होगी। आपने क्या करना है, अटमोस्ट स्ट्रगल करनी है कि इस कुरान को लेकर चलें, इस कुरान को लेकर पहुंचाएं, इसके जरिए से आगे तबलीग करें। लेकिन हम क्या करें, हमने तो खुद ही नहीं इसको जानना, तो हमने इसको पहुंचाना क्या है किसी तक, हम तो अपने दीन को ही नहीं जानते। हमारा तो हाल ये हो चुका है कि आज हम अपने ही कुरान के बारे में ही शकुक को शुभात रखते हैं। अफसोस से कहना पड़ता है, मैं तो ये कहूंगी कि किसी और तक क्या पहुंचाना हक को। अब तो ये हाल हो गया है कि दुख की बात है कि जब अपने घर में आग लगी हुई है तो किसी और की आग क्या बुझाएंगे। हमारे तो अपने मुसलमान आजकल इस कदर बदसन है अपने ही दीन से कि दीन लगता है कि फ्री फॉर ऑल है, कि जो चाहे इसके मुतल्लिक जो भी बात करे। आज मुसलमान इतने शक करते हैं अपने दीन के बारे में, अपने नबी के बारे में, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसे ऐसे खदशात का इजहार करते हैं कि इंसान सोचता है ला ये मुसलमान है, और ऐसे लगता है कि ये दीन नहीं कोई बला है या कुरान नहीं है, कोई पता नहीं क्या चीज़ है, कि अगर इसकी तरफ आ गए तो पता नहीं हम कोई ऐसी मखलूक बन जाएंगे कि हमारे सर पे सींग निकल आएंगे, हम पता नहीं क्या बन जाएंगे। ओ नहीं, इसकी तरफ नहीं आना, इतना डरे हुए हैं इससे। तुम्हारे तो अपने ही लोगों का ईमान आज खतरे में पड़ा हुआ है, हम तो खुद ही शक में पड़े हुए, हम किसी और को क्या इस तरफ बुलाएंगे कि इसके ऊपर यकीन करो। हम पहले खुद नूर में तो आए, हम तो खुद अंधेरे में पड़े हुए, हम तो खुद ये जान रहे हैं कि हमारा दीन कहता क्या है, तो जो खुद ही अंधेरे में है वो दूसरे को रोशनी क्या दिखाएगा। मगर जिस हद तक भी आप इस तरफ आए हैं, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, तो जितनी आपकी ताकत है उस, एक तो सबसे पहले अपनी नियतों को देखें। देखें, एक मैं सवाल आप लोगों से पूछती रहती हूँ, जो भी नए आते हैं मैं लोगों से पूछती हूँ कि आपकी किस वजह से आप कुरान पढ़ना चाहते हैं, ये मतलब सीखने का आपका क्या मकसद है। तो मुझे अक्सरियत का जवाब ये मिलता है, अमूमी तौर पे, सारों का नहीं मैं कहती, मगर ज़्यादातर लोग जो मुझे जवाब देते हैं वो ये होता है कि इसलिए हम पढ़ना चाहते हैं, इसलिए हम सीखना चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को जवाब दे सकें। आजकल बच्चे बहुत क्वेश्चन करते हैं, तो देखें वो तो आप इस मुल्क में थे तो बच्चे आपके रीजनिंग करने लगे, क्वेश्चन करने लगे। अगर आप किसी और मुल्क में होते, किसी इस्लामिक मुल्क में, और आपके बच्चे सवाल ना करते, तो फिर क्या इस कुरान को सीखने की, समझने की ज़रूरत नहीं थी? अल्लाह ताला ने तो फरमाया इसके ज़रिए स्ट्रगल करो, इसको लेकर के लोगों तक जाओ और इसके ज़रिए लोगों तक पैगाम पहुंचाओ, ये हेल्प करेगा आपको। ओके, अब हमारे पास तो और कोई चीज़ नहीं है, हम इसी कुरान को लेकर ही जाएंगे, अपनी बातों को लेकर नहीं जाएंगे। कि मैं ये कह रही हूँ तो मेरी बात मानो। इस कुरान के जरिए ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों तक पैगाम लेकर गए थे, इसी कुरान के जरिए आज हमने भी लेकर जाना है। जो तरीका उन्होंने किया था वही हमने करना है। अब क्या है, अब आप देखें, अक्सर सिर्फ इसलिए सीखना चाहते हैं कि बच्चों को जवाब दिया जा सके। यानी गोया हमारी ये मकसद ही नहीं है ये इल्म लेने का कि हम इसके ज़रिए से स्ट्रगल करें, इसको लेकर फैलाएं, इसको भी दूसरों तक पहुंचाएं। इल्म तो एक अलग चीज़ होता है और एक चीज़ होती है इंफॉर्मेशन, मालूमात। मालूमात इल्म नहीं है। असल इल्म तो ये है कि इंसान उस इल्म से पहले खुद फायदा उठाए, फिर अपने घर वालों को दे, फिर बाहर वालों को दे, फिर और उसका दायरा कार फैलता जाए। आप तो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन, दैट्स इट। तो वो इंफॉर्मेशन लेके आप अपने बच्चों को दे दें। हालांकि ये इल्म तो इंफॉर्मेशन का एक पलंदा नहीं है, ये तो वो है जो इंसान को नूर में ले आता है, जो उसके दिल में अल्लाह का डर पैदा करता है, दीन पर अमल करने का शौक पैदा करता है, आखरत का खौफ पैदा करता है। इसीलिए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में सहाबा कराम बैठते थे तो रोने लगते थे। हालांकि इतने इतने बहादुर लोग होते थे, कईयों से लड़ने वाले होते थे, मगर उनके दिल कैसे नरम हो गए थे, क्योंकि इल्म आ गया था उनकी जिंदगी में, क्योंकि उन्होंने इल्म लिया था अपनी जिंदगी की इसलाह के लिए। उन्होंने इंफॉर्मेशन लेने के लिए नहीं दिया था कि चलो हम भी लोगों को बता दें कि भाई चलो। और अक्सर लोगों का तो यही होता है कि हम अब बच्चों तक पहुंचाएंगे, बच्चों तक पहुंचाएं, आपको अपनी नहीं कोई फिक्र, खुद का आप मुतमईन है कि आप खुद बिल्कुल ठीक हैं, और आप तो खुद, क्योंकि बच्चे तो यहाँ पे पल बढ़ रहे हैं, चलो वो स्कूलों में जाते हैं, वो एक तो पूछते हैं, और फिर ये ना हो कि यहाँ का रंग चढ़ जाए, इन तक बता दें। और हम तो बिल्कुल ठीक ही हैं ना, हम तो ऐसे मुल्क से आए हैं, हमारी तो मतलब जाहिर है हम तो सही हैं ही। यानी ये गोया आपका ये कहना होता है कि हम तो सही हैं, हमें नहीं ज़रूरत है, असल तो हमारे बच्चों को ज़रूरत है। तो आप अपनी हालत से मुतमईन है? सुबहान अल्लाह, हज़रत उमर ने फरमाया था ना, कितनी प्यारी बात थी कि अगर मेरा एक कदम जन्नत के अंदर हो और एक बाहर हो, तब भी कहते हैं मुतमईन नहीं हूंगा मैं, तब भी श्योरिटी नहीं है कि अंदर चला जाऊंगा। और माशाल्लाह आपको तो बस बच्चों की फिक्र है, आप तो खुद टिकट आपने कटवाया ही हुआ है, आपको क्या फिक्र है कि आपने कहाँ जाना है। हाँ, पहले तो अपनी फिक्र करनी थी ना। आज नियत को अपनी पहले तो देखें, चेक करें आपकी क्या है। और मैं अब आपको ये भी बताऊंगी इंशाल्लाह आज कि आपकी नियत होनी क्या चाहिए, क्योंकि अगर आपकी वो नियत नहीं है जो जो मैं आपको बताऊंगी, तो आपको अजर इसका कुछ नहीं मिलना, बस ठीक है। जिसने जिस चीज़ की नियत की ना, उसको वही मिलेगा। आपकी अगर नियत कुरान पढ़ने की यह है कि मैं बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा दूँ, तो बच्चों तक तो पहुँच जाएगी, लेकिन अजर कुछ नहीं है। लेकिन जिसने हिजरत की किसी औरत के लिए, क्या है हदीस में, हिजरत तो उसने की, बाकियों ने भी हिजरत की थी, लेकिन इसने चूंकि औरत के लिए की, तो इसको हिजरत का वो अजर नहीं मिलेगा जो बाकियों को मिलेगा जिन्होंने अल्लाह के दीन की खातिर की। तो आपके जो इंसान नियत करता है उसको वो तो चीज मिल जाएगी, ठीक है। आपने बच्चों के लिए नियत की, बच्चों तक इंफॉर्मेशन पहुंच गई, आपको अल्लाह ताला कयामत के लिए यही कहेंगे आपने ये नियत की थी, आपका ये मकसद था ना कुरान पढ़ने का, तो आपके बच्चों तक इन्फॉर्मेशन, आपने कहाँ चाहा था कि मुझे आखिरत में इसका कोई अजर मिले, आपने कुछ और तो नहीं चाहता जिसका मैं आप भी आपको बताने लगी हूँ। तो सबसे पहले आपका मकसद क्या होना चाहिए कि जो आप कुरान पढ़ने आ रहे हैं, मैं आपको 19वें पारे पे आके बता रही हूँ कि आपका मकसद क्या होना। चलो आज ही सही कर लो अपना मकसद, वैसे तो आपको पहले उस पर बताना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं सोचती थी कि ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं, ये खुद से इंसान के अंदर यही तलब तड़प होनी चाहिए। लेकिन जब बहुत सारे लोगों से मैं पूछती रहती हूँ, तो मुझे पता चला कि बहुत कम लोग होते हैं जिनका ये मकसद होता है जो होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान ही हमें कितनी चीज़ें सिखाता है, वरना पता नहीं हम तो किस सतह पे ज़िंदगी गुजार रहे थे, कितने जाहिल हैं। हमें ये भी नहीं पता कि हमने क्यों अपने दीन को सीखना है, इस किताब को सीखना है। पहला मकसद, जो सबसे पहली नियत आपकी होनी चाहिए कि मैं क्यों इस कुरान को पढ़ रही हूं ना, वो लिखे इन्वर्टेड कॉमास में अल्लाह की रजा। कि मेरे से मेरा रब राजी हो जाए, अगर मेरे पास इल्म नहीं होगा तो मैं शैतान के वार से नहीं बच सकती, मैं नेक अमल नहीं कर सकूंगी, क्योंकि मुझे तरीका ही नहीं आएगा और मेरे अमाल बर्बाद भी हो सकते हैं। तो मुझे तो अपने रब को राजी करना है, तो उसके लिए मैं ये रास्ता इख्तियार कर रही हूं कि इल्म के जरिए ही तो मुझे पता चलेगा उसको कैसे राजी करना है, और फिर मेरा रब इससे खुश भी होता है, ये उसको खुश करने वाला अमल भी है कि मैं उसके कलाम को सीख रही हूं। और पहली वही भी जो उसने नाजिल की थी वो इल्म के मुतल्लिक की थी, तो मैं कुरान क्यों सीख रही हूं? ताकि मुझे मेरे रब की रजा मिल जाए, वो मुझसे राजी हो जाए, मुझे उसका कुर्ब मिल जाए, मैं उसका कुर्ब चाहती हूं। कितने लोग हैं जो ये बात कहते हैं? आपकी क्या ये नियत थी? फिर नंबर टू क्या है? अपने आप से जहालत को दूर करना, अपनी इस्लाह करना, यानी मैं जहालत में नहीं रहना चाहती, मैं अब अंधेरों में नहीं रहना चाहती, मैं रोशनी में आना चाहती हूँ, मैं अपनी इस्लाह करना चाहती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को ठीक करना चाहती हूँ। मैंने जानवरों की सतह पे ज़िंदगी गुजारी, अब मैं उस सतह पे ज़िंदगी गुजारना चाहती जो मेरा रब मुझसे चाहता है। ये नंबर टू आपकी नीयत होनी चाहिए। फिर नंबर थ्री नीयत क्या होनी चाहिए? कि मैंने दूसरों से जहालत को दूर करना है। अब यहाँ पे आएगा कि आप दूसरों से, यानी आप उसमें, या फिर आपके बच्चे आ गए या जो भी आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, उन तक दावत पहुँचानी है, मेरे अंदर की भी जहालत दूर हो और जो दूसरों में है उसको भी दूर करूं। वो तो इस पॉइंट पे आ जाके आता है। फिर नंबर फोर क्या नियत होनी चाहिए? मेरे दीन की हिफाजत हो। ये मुझे पता ही नहीं होगा तो मेरे दीन की हिफाजत कैसे होगी? मेरा ईमान ना लॉस्ट हो जाए। और फिर कोई भी नहीं ये सीखेगा तो ये इल्म तो किताबों में ही रह जाएगा। इसकी हिफाजत ये है कि इसको सीनों में समेट लें। फिर दीन का दिफा करने की नियत होनी चाहिए, ये जो इस आयत में है, कि मैं दीन का दिफा करूं डिफेंस के लिए, ताकि मुझसे कोई बात करे तो मैं उसका जवाब दे सकूं, दीन पे जो हमले कर रहे हैं मैं उस सिलसिले में मैं खड़ी होकर कोई बात कह सकूं, इस्लाम को या मुसलमानों को जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है, या जो लोगों के दिलों में शक पैदा हो गए हैं, या जो लोग अब कितनी तरह तरह की इस्लाम के ऊपर एक गुमराह कन दीन है और पता नहीं क्या है और लोगों को क्या बना देता रहे, इन सारी बातों का मैं जवाब दे सकूं, मैं दीन के डिफेंस के लिए खड़ी हो सकूं, तो आप फिर जिहाद कर रही हैं ना। ये है जिहाद जिसका जिक्र यहाँ पे, आप अल्लाह के रास्ते की मुजाहिद हैं। जब आप ये नियत कर लेती हैं, अल्लाह ने कुरान के जरिए जिहाद को बड़ा जिहाद करार दिया है, क्योंकि ये इतना बड़ा रद्द है कि आप दुश्मन को, यानी जिससे ऐसा वार है समझ लें कि जिससे दुश्मन खड़ा भी नहीं हो सकता। फिर देखें, तलवार वाले जिहाद से भी ये इल्म का जिहाद अफसल है। अक्सर तो ये होता है ना, हमारे यहाँ क्या सोच है, जिहाद मीन्स लड़ना मरना। आज मुसलमान भी इतने, चूंकि दीन का इल्म ही नहीं, अब पता ही नहीं है अपने दीन का ही ना, तो इसलिए मुसलमान भी क्या समझते हैं कि इसका मतलब यही है। जिहाद का मतलब क्या? जिहाद का मतलब है कि लड़ना मरना, ये बस जिहाद का मतलब। आपने तो अपने दीन को ही नहीं समझा, जिहाद का मतलब तो समझो, वो तो आखिरी जो चीज़ है ना वो है। आप जो आखिरी चीज़ को है ना सबसे पहले पकड़ लेते हैं। आज दुनिया में जिहाद के नाम पे जितनी लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, उनसे सवाल है, क्या उन्होंने लड़ाइयाँ जंगे और इनसे पहले जिहादन कबीरा किया? कुरान पहुँचाने का काम कर लिया? क्या उन्होंने अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया? क्या उन्होंने वो तरीका इख्तियार कर लिया जो अल्लाह ने हुक्म दिया था? हमने बिल्कुल तरतीब को उलट दिया है ना। सुन्नत से मिलने वाली क्या तरतीब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पहले ही दिन जाते ही क्या दिया, अब किसी तक पैगाम पहुंचा नहीं और तलवार उठाई और उसको मार और उसको मार, तुम नहीं मानते, अच्छा चलो उसको मार, वो भी नहीं मानता उसको मार दो। क्यों, ऐसे क्यों नहीं किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद किसके साथ किया था सबसे पहले बताएं? कुरान के साथ। आपने कुरान पहुंचा दिया क्या? तमाम लोगों तक पैगाम पहुंच गया क्या? हुज्जत तमाम हो चुकी है क्या जो आज आप हथियार उठा रहे हैं? देखें, मेरी किसी से बात हो रही थी, किसी गैर मुस्लिम से, तो मुझे इतना दुख हो रहा था कि सबसे पहले तो जब आप तो तबलीग करने लगते हैं आज, तो आपको उनके जहन में जो इस्लाम के ख़िलाफ़, जो हमने आज खुद ही अपनी हरकतों की वजह से जो एक इमेज बना दी है, पहले उसको साफ़ करना पड़ता है, फिर उसके बाद आप कोई नई चीज़ लिख सकते हैं। पहले तो आप अपने आप को क्लैरिफाई करते हैं ना कि नहीं, वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं या जो आपको बताया गया। एक एक क्लीन बोर्ड पे लिखना आसान है, लेकिन जिस पे पहले ही कुछ लिखा जा चुका हो उसको मिटा के फिर नए सिरे से लिखना कितना मुश्किल है ना। ये तो आज जिहादन कबीरा से ही हो सकता है कि जब हम सारे इतनी स्ट्रगल करें कि कम से कम अपने दीन का दिफा करने के तो काबिल हो जाएं, आपने मिटा के और क्या लिखना है? आप तो इतने भी काबिल नहीं है कि अपने दीन का दिफा कर सकें, आप तो खुद ही उस प्रोपोगेंडा के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, ये ऐसे कह रहे हैं, मुझे तो खुद भी नहीं कुछ पता, तो चलो जो कह रहे होंगे ठीक ही कह रहे होंगे। तो आज तो जिहादन कबीरा की और भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमने ये सारी चीजें जहन से निकालनी है और इसके लिए ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट करनी है। लेकिन आज देखें कितनी ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट हो रही है। ज्यादा ज्यादा क्या कर लेते हैं, कोई दर्स कर लिया वो बैठ गए, चलो पारे बांट दिए वो बैठ गए, कुरान की तरफ नहीं आते। फिर भी ये कुरान को सीखना है, इसको समझना है, वो नहीं करना, बस दर्स करा लिया घर में, चलो हमारी घर में बरकत हो गई, या किसी दर्स में चले गए। बस दर्सों में भी जाना एक फैशन हो गया कि भाई दर्स में चले गए, वहाँ क्लास नहीं, क्लास नहीं हम ज्वाइन कर सकते, हम इसको सीख नहीं सकते बाकायदा तौर पे, जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट बनना, वो नहीं हमने करना। तो इसको पहुंचाना है, इसके जरिए से आगे एफर्ट करनी है। और देखिए ये हम सब की जिम्मेदारी है, ये सिर्फ एक बंदे की किसी के ऊपर नहीं जिम्मेदारी, ये सब की जिम्मेदारी है, हर एक उम्मती की जिम्मेदारी है। जितना हद तक आपको आया है औरों को भी बुलाओ, पहले तो अपने मुसलमानों को बुलाओ ना, पहले तो अपने मुसलमानों तक पैगाम पहुंचाओ और साथ साथ दूसरों तक बताओ। और इस सिलसिले में काफरों की बातों से इंप्रेस ना हो जाना, उनका लिहाज ना करना, अपना काम करते चले जाना और इसमें पूरी मेहनत करना। अब आप अगर चेक करें तो हर किसी तक पैगाम पहुंचाना तो दूर की बात है, आप खुद ही सोच लें कि पूरी दुनिया, तो यानी आप अराउंड द ग्लोब अभी नहीं सोचें, आप सिर्फ इतना सिर्फ सोचें कि मेरे इर्द गिर्द वाले लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन तक कुरान के ज़रिए स्ट्रगल हो चुकी है, जिन तक पैगाम पहुंच चुका है, जिन तक ये कुरान का पैगाम उनके दिलों में दाखिल हो गया, उन तक, चलो दिलों में नहीं दाखिल हुआ, उन तक कम से कम सारी इंफॉर्मेशन, सारा कुरान उन तक पहुंच गया, उनको समझ आ चुकी है। अमल की नहीं मैं बात कर रही, सिर्फ उन तक पहुंच चुका है सारा पैगाम। अपने रिश्तेदारों को चेक करें, अपने दोस्तों को चेक करें, अपने टीचर्स को चेक करें, अपने नेबर्स को चेक करें, अपने कोलीग्स को चेक करें, जिनके साथ भी आपका वास्ता पड़ता है, मुझे ये बताएं मुसलमान है या गैर मुस्लिम, बताएं कि कितने हद तक लोगों तक, क्या आप ये नहीं कह रहे कि अक्सरियत तक, मेजॉरिटी तक, अभी तो हमारे अपने घरों में भी, अपने ख़ानदानों में भी मेजॉरिटी तक कुरान का पैगाम नहीं पहुंचा, उनको अभी पता ही नहीं है। आप तो अभी हाफ वे में आए हैं ना, अभी तो आप तक भी पूरा नहीं पहुंचा, तो वो जो है उन तक तो बिल्कुल ही नहीं पहुंचा कुछ। अभी तो आपने आके कुछ, आपको तो थोड़ा बहुत फुरकान मिला है, उन तक तो इतना भी नहीं मिला। खुद सोचें कि क्या उन तक पहुंच गया? हम तो अभी ये भी नहीं कह सकते कि हमारे इर्द गिर्द वालों तक सब पहुंच गया, कोई भी नहीं ये दावा कर सकता। तो अगर हमने इतना ही काम नहीं किया तो फिर हम कैसे तलवार लेके खड़े हो सकते हैं, बताएं? क्या हुज्जत तमाम हो चुकी है? तो अभी तो बहुत सारे लोग रहते हैं और हर कोई अपने अपने इर्द गिर्द देखे, यार आज फिर भी हम ये कहते हैं कुरान क्यों पढ़े। अच्छा अगर पढ़ रहे हैं, अच्छा इसलिए हम पढ़ रहे हैं, आजकल फारिग है ना हम, तो हमने सोचा चलो क्लास ही ले लेते हैं। और कल को अगर कोई जॉब मिल जाएगी तो फिर छोड़ो, इस मामूली सा काम है ये, तो हमने ऐसे ही टाइम पास के लिए ले लिया था क्योंकि कुछ और नहीं था ना उन दिनों, जॉब नहीं मिली हुई थी, तो मैंने कहा चलो क्लास ले लेती हूँ। यानी बिल्कुल एक बेकार सा काम है, एक मामूली सा काम है, एक साइड का काम है, चलो नहीं कुछ और मिला तो। अब चलो सारी चीज़ों से फारिग हो गई हूँ मैं, सोचा मैंने घर में क्या बोर होती रहूँगी, तो चलो एक ये ऑनलाइन क्लास हो रही थी तो मैंने कहा चलो यही ले लेती हूँ। अगर ये हम अहमियत दे रहे हैं कुरान को, तो क्या हमने जिहादन कबीरा करना, ये मुझे बताएं। कौन से फरिश्ते उतरे होंगे जो आके इस इस्लाम की हकानियत लोगों तक पहुंचाएंगे, कौन से फरिश्ते आएंगे जो ये कुरान को ले लेके और जाएंगे और फिरेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। अच्छा चले हम कह देते हैं मेरी और आपकी तो जिम्मेदारी है ही नहीं, चलो ठीक है हम फारिग हो गए, कौन पहुंचाएगा फिर, किसकी जिम्मेदारी है ये, आप मुझे सिर्फ इतना बताएं किसकी जिम्मेदारी है। सारे अपने ऊपर से जिम्मेदारी उतार दो, वो जो मौलवी साहब बैठे हैं मस्जिद में वो पहुंचाएंगे, आप क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती नहीं है। जब वो कयामत के दिन खड़े होकर कह देंगे कि इन मेरी कौम ने तो कुरान को छोड़ दिया था, क्या कहेंगे उस वक्त, कि हमने तो ये सोचा था कि वो सिर्फ इमाम साहब के लिए, मौलवी साहब के लिए, हमारे लिए थोड़ी था कुरान। तो अगली आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं इसके जरिए अपने दीन का दिफा कर सकूं, और आज सबसे ज्यादा जरूरत है इस दिफा को करने की, क्योंकि इतने हमले हो रहे हैं इस दीन के ऊपर, तलवार से नहीं जुबानों से, लेकिन आप ना तो अपनी जुबान हिलाने के काबिल हैं, बाकी सारी चीजों में हमारी जुबान बहुत चलती है, हर चीज का इल्म है, लेकिन इसके बारे में नहीं इल्म, उसके बारे में इतने मिस्कीन बन जाते हैं, हमें क्या पता, हमें तो खुद ही नहीं पता। कोई गैर मुस्लिम आपसे पूछना भी चाहे, वो कहाँ से जाके पूछेगा, वो आपसे पूछता है, आपकी कोई डॉक्टर है, आपकी कोई कोई आपसे पूछती है, आपको आगे कोई जवाब ही नहीं आता। तो ये देखें कि ये जो इल्म के जरिए आपका जिहाद है ना, ये तलवार के जिहाद से भी ज्यादा अफजल है। क्यों, इसकी मैं आपको वजह भी बताती हूँ, आप सोचेंगे पता नहीं उसको डिग्रेड करें, नहीं, इसकी वजह यह है कि इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, इसमें बड़ी मुशक्कत है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें, ऐसे ही नहीं इल्म आ जाता। इब्ने कय्यिम ने अपनी किताब में लिखा था कि इल्मी जंग से जो है ना कई इस्लाम के दुश्मन मुसलमान हो जाते हैं, इस्लाम को इससे तकवीयत मिलती है, कई दुश्मन जो होते हैं ना इस्लाम के वो मुसलमान हो जाते हैं। आज देखें आपके सामने भी ये न्यूज़ आई होगी कि इंडिया की जेल में एक शख्स जिसने यानी हिंदू आदमी जिसने ट्रेन में उसमें दहशतगर्दी में ट्रेन को उड़ाने में उसका हाथ था, तो किसी मुसलमान के ऊपर वो नाम लग गया था, और वो मुसलमान लड़का भी उसी जेल में था, और आपको पता है कि इस हिंदू आदमी ने बाहर निकल के क्या बयान दिया, उसने कहा कि इस लड़के के इखलाक से, इसके किरदार से, और जितना इसने मेरे साथ अच्छा सलूक किया, मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि मैं इस चीज़ को कन्फेस करता हूँ कि इस चीज़ में मेरा हाथ था, इसका नहीं था, मेरा ज़मीर मुझे इतना ही मलामत कर रहा है, मुझे पता है कि मुझे सज़ा हो जाएगी, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पे कन्फेस करता हूँ, इसलिए मानता हूँ कि मैं अब अपने ज़मीर के हाथों मजबूर हो गया हूँ कि इसने मेरे साथ इतना अच्छा सलूक किया, किस चीज़ ने तबलीग की वहाँ पे जेल में, किस चीज़ ने तबलीग की उसको, इस मुसलमान के किरदार ने, इसके अखलाक ने, वो कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं था, एक फोन बेचने वाला लड़का लेकिन देखें ये किरदार अखलाक हमें कौन सिखाता है, ये कुरान सिखाएगा ना, ये फुरकान सिखाएगा, हक और बातिल की तमीज सिखाएगा, वो भी खड़ा होकर उसका सर तोड़ देता और कहता कि देखो तुम्हारी वजह से मैं यहां पे हूं, किया तो तुमने और भुगत मैं रहा हूं, क्या हो जाता उसे। देखें ये जो जुबान है, ये जो इंसान का किरदार है, जो इल्म पाना है, इल्म के जरिए से आप इस्लाम के दुश्मनों को मुसलमान कर सकते हैं, और इसमें कोई खून खराबा भी नहीं है। इसमें इंसान बात बयान करता है अपनी अपने कलाम के जरिए, जबकि तलवार से, इब्ने कय्यम कहते हैं तलवार से जंग करने से कम ही कोई मुसलमान होता है। तो फिर हमें क्या करना है? हमें ऐसा जिहाद करना है जो इस कुरान के जरिए, जो कुरान के ऊपर, जो इस्लाम के ऊपर हमले हो रहे हैं उसका जवाब देने के लिए हमें इस कुरान का सहारा लेना है। लेकिन उसके लिए पहले हमें खुद इसका इल्म हासिल करना है। तो इसके जरिए से अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब चाहे आपकी कोशिश, आपकी मेहनत, आपकी जो स्ट्रगल है, हर एक की डिफरेंट तरीके से हो सकती है, किसी की ज़ुबान से हो सकती है, किसी के कलम के जरिए से हो सकती है, कोई और तरीके से हो सकती है, किसी अपने अमल से हो सकती है, मगर वो सब किसके जरिए से जाएगी, ये सब किसके थ्रू होगा? जब आपके पास कुरान का इल्म होगा ही तो अमल भी बदलेगा ना, और आप किसी के साथ अच्छा करने के काबिल होंगे, तभी तो आपके अमल के जरिए भी तबलीग होगी। जब कुरान का इल्म होगा तो तभी कलम से भी कुछ लिखेंगे, जब कुरान का इल्म होगा तो तभी जुबान से भी कुछ बोलेंगे। तो हर एक चीज का फिर सेंटर पॉइंट क्या बन जाता है? ये फुरकान। आप जितना भी दीन की खिदमत करना चाहें और आपके पास खुद के पास कुछ इल्म नहीं है, आप क्या खिदमत करेंगे? आप खुद ही ब्लैंक हो जाते हैं, आप खुद ही दूसरों से इंप्रेस हो जाते हैं, आप क्या खिदमत करेंगे? आप तो अपना ही ईमान बचा लें तो बड़ी बात है। तो आज से अपनी नीयतें दुरुस्त करें, ये पांच चीजें लिखें, और अब से इंशाल्लाह हमने इसको नियत बनाना है, ताकि हम फिर जाके अल्लाह ताला के हाँ ये कह सकें कि अल्लाह इसलिए मैं कुरान सीख रही थी, मैं तुझे राजी करना चाहती थी, अल्लाह मैं तेरी फरमाबरदारी वाली जिंदगी अपनाना चाहती थी, अल्लाह मैं तेरे दीन का दिफा करना चाहती थी, मैं तेरे दीन की मुजाहिद थी। तलवार उठाने वाला ही मुजाहिद नहीं होता? जुबान के जरिए से भी आप जवाब देके अल्लाह के दीन के मुजाहिद बन सकते हैं। जुबान से जिहाद करने का मतलब ये नहीं किसी से लड़ना ही शुरू कर देना, दलील के साथ। वो दलील हमारे पास होती नहीं है। वहुवा अल्लज़ी मरजल बहरैन, और वो अल्लाह वो ज़ात है जिसने मिलाए दो समंदर, हाज़ा अज़बुन फुरातुन व हाज़ा मिल्हुन उजाज, ये एक मीठा है और दूसरा नमकीन और खारी है, एक मीठा है शीरी, इसका खुशगवार मज़ा है। देखो आज इन लोगों ने भी अब देखो पता कर लिया, और ये तो उस वक़्त की बात है, आज ये साइंस कहती है, और कुछ ईमेल्स भी मेरे पास आई उसके अंदर भी था कि देखें ये मीठे पानी का है और ये खारी पानी का पानी है। आप पानी को देखें मिक्स करें, एक में नमक डाल दें, एक में चीनी डाल दें, दोनों को मिक्स करें, तो क्या अलग अलग रहेंगे? वो नहीं रहेंगे ना। एक ग्लास में डाल दें, और ये समंदरों के अंदर है जहाँ पे लहरें हैं, वेव्स हैं, वो वैसे ही मिक्स हो जाता है हर चीज़, उसके अंदर एक मीठे पानी का चल रहा है, पानी की करंट है, और दूसरा नमकीन पानी का करंट है। कभी कभी वो ऊपर नीचे होते हैं, ऊपर खारी है नमकीन पानी है और नीचे मीठे पानी का चश्मा है, मिक्स नहीं हो रहे। और यहाँ पे देखें ये लफ्ज़ भी बड़ा वो है ना, महाराजा, मैंने आपको बताया ना कि मिक्स भी है यानी साथ साथ भी है, लेकिन अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी भी नहीं लूज करते। सुभान अल्लाह, कि कौन नहीं उनको मिक्स होने दे रहा? वजाला बैना हुमा, उसने बनाया, उस रब ने बनाया इन दोनों के दरमियान बरज़ख, एक पर्दा बना दिया, वही जरम महजूरा, और एक बंद बांधा हुआ उनके दरमियान। क्या ये अल्लाह की कुदरत नहीं है? किसने उनको अलग अलग रखा हुआ है? और फिर देखें साथ साथ चल रहे होते हैं, और एक मीठा है और एक खारी है, और इसके अंदर अल्लाह ताला की इतनी बड़ी हिकमत है। आप कहेंगे जो शायद आपको लगे कि इसकी क्या ज़रूरत है, जो खारी पानी है उसकी क्या ज़रूरत है, सारा ही अल्लाह ताला ने मीठा क्यों नहीं कर दिया? हालांकि अगर समंदर मीठा होता ना, तो मीठे पानी में ये खासियत होती है कि बहुत जल्दी सड़ जाता है, खास तौर पे समंदर जिसमें खुशबू खुशकी से भी ज्यादा आप देखिए मखलूक है, जितनी मखलूक आपकी जमीन पे, इससे कहीं ज्यादा आबादी जो है वो जानवरों की समंदर के अंदर है। अब जो इसमें मछलियां मरती हैं, आज तक मर रही हैं, देखिए आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक, कौन उनकी वहां पे कब्रें तो नहीं बना रहा ना, वो वहीं पे सड़ती हैं, वहीं पे मट्टी हो जाती हैं, और कहीं आपको ना कोई स्मेल, ना कोई कुछ, ना कोई ऊपर आपको मछलियां नजर आ रही हैं कि पड़ी हुई हैं उनकी डेड बॉडीज। और फिर जमीन का पानी भी, और उसमें जो बहने वाली सारी गंदगियां भी हैं, वो भी आप देखते हैं ना समंदर में जाके वो डाल देते, समंदर में जाके पड़ती हैं सारा कूड़ा करकट और ये सब। अगर ये पानी मीठा होता तो 2-4 दिन में सड़ जाता, और उसकी सड़ांध की जो बदबू है उससे जमीन वाले जमीन पे रहना उनका मुश्किल हो जाता। तो अल्लाह ताला ने उसको इतना सख्त नमकीन बना दिया, इतना कड़वा, इतना तेज बना दिया कि दुनिया भर की आप गंदगियां उसमें जाके डाल देते हैं, और खुद उसमें रहने वाली मखलूक भी उसमें मरती है, और फिर भी नहीं वो सड़ता, और उसकी कोई स्मेल नहीं है आप देखें। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने देखिए इंसान की जरूरत के लिए उसके अंदर मीठे पानी का भी करंट एक दरिया चला दिया, और कड़वे पानी का भी, और दोनों पानी मीलों तक एक साथ चलते जा रहे हैं, एक तरफ मीठा एक तरफ कड़वा, दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। हालांकि दोनों के दरमियान देखने में आप देखें कोई आपको दीवार नहीं नजर आ रही, कोई पर्दा नहीं नजर आ रहा, कोई चीज नहीं नजर आ रही, कोई रोक टोक नहीं नजर आ रही, तो आपको लगे कुदरत नहीं पता चलती। अब वो बताते भी हैं कि कौन कौन सी वो जगह हैं जहां पे ये इस तरह से चल रहे हैं साथ साथ। सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ताला अपनी कुदरत के जरिए कहता है मुझे पहचानो, तुम पहचानते नहीं हो, ये कौन कर रहा है, तुम मिला के देखो अपने घर में, नहीं अलग अलग रहेंगे मीठा और नमकीन पानी, मिलाओ तो जरा। और इसी तरह अगर मीठे पानी से मुराद मोमिन ले और खारे पानी से मुराद काफिर ले, तो एक माशरे में रहते हुए भी साथ साथ भी चलेंगे लेकिन अलग अलग रहेंगे, वो अपना करेगा वो अपना करेगा। ये ना हो कि मीठे के ऊपर खारा सवार हो जाए, ये ना हो कि मीठे के ऊपर खारा गालिब आ जाए और आप उस बीच में दब जाएं कि अच्छा मैं तो उनके सारे तौर तरीके और सब ले लिया, और वह आप भी खारे बन जाएं। फिर इसी तरह दुनिया में भी इंसान कुछ कड़वे हैं कुछ मीठे हैं, और कभी कभी उनको साथ साथ चलना पड़ता है, कभी कभी एक घर में रह रहे होते हैं लेकिन साथ साथ चल सकते हैं। हम कहते हैं नहीं चल सकते, अब मैं नहीं रह सकती, अब मेरा गुजारा नहीं है, नहीं देखो समुद्रों में भी तो मीठा और कड़वा साथ साथ चल रहे हैं, ये अल्लाह की निशानी नहीं है। तो सूरह फुरकान में मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था ना, दो दो चीजें आपको दिखाई जा रही है ना बार बार, एक मीठा एक खारी, एक ऐसा, तो देखें आपको बार बार ये नजर आएगा फर्क। वहुअ लजी खलक मिनल माए बशरन, और उसी ज़ात ने बनाया पानी से इंसान को। अगर इंसान से मुराद आदम अलैहिस्सलाम ले तो मतलब है कि आम पानी जिससे, यानी एक जो वो पानी जिससे आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, और अगर इंसान से मुराद सारे ही इंसान ले लें तो इससे मुराद होगा ये नुतफ़ा, पानी से फिर मुराद क्या होगा, नुतफ़ा, उससे अल्लाह ताला ने पैदा किया इंसान को। फ़जअलहु नसबं वसिहरा, फिर अल्लाह ताला ने बनाए उसके लिए नसब, नसब के रिश्ते भी बनाए अल्लाह पाक ने, देखो कैसे खूनी रिश्ते अल्लाह ताला ने पैदा किए, खूनी रिश्ते पैदा करके, और अल्लाह ने उसको फिर जब वो जवान होता है उसकी शादी होती है तो कुछ और रिश्ते भी अल्लाह ने उसको दे दिए, और वो हैं सेहर के रिश्ते, वो हैं ससुराली रिश्ते। तो ये भी अल्लाह की नेमतें हैं कि अल्लाह ताला ने देखो कैसे, तो दो इंसान होते हैं और उसके बाद कितनी सारी रिश्तेदारियां हो जाती हैं, बहन भाई, और फिर आगे माँ की तरफ से भी जो रिश्ते और जो बाप की तरफ से भी रिश्ते, जिनको हम रहम के रिश्ते कहते हैं ना, बहुत दफ़ा बात पड़ी हुई हमने रहम के रिश्तों की, सिला रहमी की, कता रहमी की, तो वो रहम के रिश्ते कौन से होते हैं, जो माम और बाप की तरफ से जुड़ते हैं आपके साथ आपके लिए, और सेहर के जब वो जवान होता है उसकी शादी होती है तो अल्लाह ताला उसको कुछ और रिश्तेदारियां दे देता है, और वो सेहर के रिश्ते हैं। अब इनमें भी अब देखें इनमें भी दो दो आ गए ना, एक नसब का एक सेहर का। एक रिश्ते से आपको नेचुरल मोहब्बत होती है, चाहे वो कितना ही आपके साथ जुल्म करें, बुरा भला करें, मसलन है कि जो आपके नसब के रिश्ते होते हैं, माँ बाप है, बहन भाई, जो भी कर दें, एक वक्त तक गुस्सा आता है, फिर उसके बाद आप माफ़ कर देते हैं। लेकिन अक्सर शहर के रिश्तों के लिए इंसान वो जैसे खारी पानी जो होता है ना, खा वो कितना भी फ़ायदेमंद हो लेकिन इंसान को अच्छा नहीं लगता, तो दिलों में भी जगह बनानी मुश्किल होती है। लेकिन आप देख लें, अजबुन फुरातुन भी जैसे ज़रूरी है, इसी तरह मिलहुन उजाजुन के अपने फ़ायदे हैं। कभी नहीं इंसान ये कह सकता कि भाई इसकी तो ज़रूरत नहीं थी, ये ना होता तो अच्छा था। अल्लाह ताला ने जहाँ पे देखें अपनी नियमतों का जिक्र किया है, वहाँ पे दोनों ही रिश्तों का जिक्र किया। तो इंसान अगर सोचे तो शहर के रिश्तों के बगैर उसकी यानी घर बन नहीं सकते थे। यानी ये जो एक नया जोड़ा वजूद में आया है, वो इसीलिए आया कि एक शहर के रिश्ते थे तो वो वजूद में आया ना, कि नसब के साथ तो शादी नहीं हो सकती थी बहन भाइयों में। तो शहर के रिश्ते ना होते तो उसका निकाह का रिश्ता भी वजूद में नहीं आ सकता था। तो यहाँ पे इस रिश्ते को भी काबिले एहतराम रखा गया। जिस तरह नसब के रिश्ते अजीज हैं, इसी तरह शहर के रिश्तों को भी इज्जत होनी चाहिए। और ये मर्द औरत दोनों के लिए, मर्द के लिए औरत के खानदान और औरत के लिए शौहर का खानदान, तो ये दोनों ही इंसान की ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ इतनी नेगेटिव सोच शुरू में ही जहनों में डाल दी जाती है ना, कि फिर दिल इन रिश्तों के लिए खुलते ही नहीं है। मतलब लड़की को शादी से पहले ही कहना शुरू कर दिया जाता है कि भाई इतना ज़्यादा तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। हाँ, तुम्हारी सास तो बड़ी सख्त मालूम होती है, और नन तो तुम्हारी बहुत ही तेज़ लगती है। तो हम क्या कभी किसी के भाई या बहन या माँ के लिए इस तरह कहेंगे? कभी नहीं जुरत करेंगे, है ना? फिर इन रिश्तों में क्यों कहते हैं? क्योंकि इस तरह से कर करके हम किसी को स्लो पॉइजनिंग करते हैं, आखिर इन रिश्तों से नफरत करवा देते हैं। और आप देखें हमारे मीडिया भी और ये सब भी इन्हीं चीज़ों को प्रोपोगेट इतना ज़्यादा करते हैं कि जैसे ये टोटली दुश्मनी के रिश्ते हैं। ठीक है, होंगे कई जगहों पे, लेकिन हर जगह तो ऐसा नहीं है। कुछ जगहों पे कह कह के ऐसा करवा दिया जाता है, इतना कहा जाता है कि दूसरे के दिल में चारों नाचार वो नहीं भी सोचता होगा तो पैदा हो जाएगा। तो अगर मीठा और खारी साथ साथ चल सकते हैं, तो ये रिश्ते भी साथ साथ चल सकते हैं, एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए। मगर दरअसल मसला पता कब होता है? जब एक फरीक अपनी हद क्रॉस करता है तो तब क्लैश होता है। अल्लाह की कायनात में देखते हैं इतने बड़े बड़े मैसेज चल रहे हैं, अब ये मीठा और खारी भी चल रहा है, और आप देखें प्लैनेट्स इतने, स्टार्स इतने, सब कुछ इतने बड़े बड़े मैसेज घूम रहे हैं, कोई भी अपनी हद को क्रॉस नहीं करता, दूसरे की हदूद में नहीं इंटरफेयर करता, इसीलिए क्लैश नहीं नज़र आते, कोई टकराव नहीं नज़र आ रहा। आपको आसमान पे देखें कोई चीज़ें टकरा रही हैं एक दूसरे के साथ? नहीं, सब अपनी अपनी हद के अंदर है, सब अपने ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, सब अपने ही दायरे में है। सब अपने अपने दायरे में रहें तो ये सब ना हो। तो ये रिश्ते अल्लाह की नेमत है। और आप देखें जहां पे ये रिश्ते ना हो, मिसाल के तौर पे अब बाज़ दफ़ा आप ऐसे मुल्कों में चले जाते हैं, या यहाँ पे भी बाज़ लोगों के बिल्कुल कोई रिश्तेदार नहीं है, फिर उनसे पूछें कि रिश्तेदारी की क्या नेमत होती है, क्या कदर होती है। अभी पिछले दिनों ही किसी ने मेरे साथ शेयर किया, तो उसने कहा कि मैं तो अपने फलां खालू को, जिनको मैंने वहां पे रहते हुए कभी नहीं याद किया था, घर के करीब रहते थे और कभी नहीं उनको मिस किया था, उनको भी आके यहाँ पे मैं मिस करता हूँ। और वो फलां रिश्तेदार है ना, जिनको कि मैंने कभी उनसे बात तक नहीं की थी, मैंने उनको भी फोन किया, तो ये यहाँ पे आए हुए, उसको जुमा जुमा 4 दिन हुए। तो जाहिर है रिश्तों की कदर फिर आती है जहां पे रिश्तेदारियां नहीं मिलती। फिर तो जिन माशरों में आप देखें, जैसे यहाँ पे सिंगल फैमिलीज हैं, सिंगल मदर्स हैं, वलद जिना बहुत हैं, तो उनकी ज़्यादातर कोई उनको रिश्तों का पता ही नहीं होता कि रिश्ते उनके हैं कहाँ, कौन बाप है और कौन चचा है और कौन क्या है, ना कोई खाला मामू का पता होता है, माँ भी उसी तरह और इसी तरह। तो उनकी मेंटल हालत क्या होती है फिर, जो बच्चे रिश्तों के बगैर परवान चढ़ते हैं? अगर आपके लिए कोई सेहर का रिश्ता है तो खुद सोचें कि कितनी बड़ी रहमत आपकी औलाद के लिए, आपके शौहर के लिए, उनके तो अपने रिश्ते हैं ना। लेकिन अक्सर क्या होता है कि इन सेहर के रिश्तों को जब खुद अच्छे नहीं लगते तो बच्चों को भी उससे दूर कर दिया जाता है, और ये बहुत ही बड़ा जुल्म है औलाद के साथ। तो रिश्तों से मेल जोल इंसान की ज़रूरत है, और मैंने आपको पहले बताया था ना कि वो मुसलमान जो दूसरों के साथ मिलजुल के रहता है और उनकी तकलीफ़ों पे सब्र करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बेहतर है उससे जो मिलजुल के नहीं रहता और उनकी अजियतों पे सब्र भी नहीं करता। तो मिलजुल के ना रहना क्या है कि उनसे कट ऑफ कर देना, बात बात पे मुंह बना लेना, बात बात पे रिमाइंड कर लेना, इतनी इतनी छोटी बातों को हवा बना लेना, ना उनकी तरफ जाना और ना ही उनको अपने घर आने देना, ना उनके साथ कोई ताल्लुक रखना, ना दुख सुख में शरीक होना, बच्चों को दूर कर देना, बच्चों को उनको उठाने नहीं देना, किसी से ताल्लुक नहीं रखना, ना पसंद करना उनको। तो देखें, याद रखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की रहमत उस कौम पर नहीं उतरती जिसमें रिश्तों के काटने वाले हों। जिस कौम में आज हमारे मुल्कों में भी देख लें, क्यों नहीं अल्लाह की रहमत उतर रही? एक अल्लाह की एक रहमत तो बारिश भी है, क्यों नहीं उतरती? कहीं यही तो वजह नहीं है कि इनमें रिश्तों के काटने वाले मौजूद हैं? आज तो नसब के भी रिश्ते कट रहे हैं, सेहर के तो दूर की बात है, नसबी रिश्ते भी काटे जा रहे हैं, और यही कयामत की निशानियां हैं। तो इन रिश्तों को बोझ ना समझे, इनके जरिए भी अजर कमाएं, इनके जरिए भी आप आखरत कमा सकते हैं, इनके जरिए भी आप सवाब हासिल कर सकते हैं। सिर्फ नमाज पढ़ के रोजा रख के वो ही नहीं है इस्लाम, रिश्तेदारियां निभाना भी बेशक मुश्किल काम है, रिश्तेदारों से आपको कई दफा बहुत तकलीफ दे भी हालात से दो चार होना पड़ता है, बहुत सारी तकलीफ दे बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन उनको तोड़ना नहीं है। तो ये तो बड़ा आसानी का काम है कि आप सारों से अलग थलग होके बैठ जाएं, कट ऑफ होके बैठ जाएं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, ना मैं किसी से मिलूंगी और ना ही कोई मुझसे मिले। तो फिर लेकिन इससे आपके बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपके हस्बैंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और आखरत में आपको क्या जवाब देना पड़ेगा? अकाना रब का कदीरा, और है तेरा रब बड़ा कुदरत वाला। और याबुदूना मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफअहुम वला यदुरुहुम, और वो इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा उनकी जो ना नफ़ा देते हैं और ना नुकसान दे सकते। नफ़ा और नुकसान वो उनके हाथों में समझते हैं जिनके हाथों में नहीं है, और देखें जिनकी इबादत से कोई भी फ़ायदा नहीं मिलना उनकी जाके इबादत करते हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे काफ़रों के एक और उसकी बात बयान की। असल में कहा यह जाता है कि हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं ये आयत अबुल हकम बिन हशाम के बारे में नाजिल हुई। जानते हैं कौन है अबुल हकम बिन हशाम? पता है आपको? जिसका नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल रखा था। अबू जहल उसका नाम नहीं था, उसका नाम तो था अबुल हकम, लेकिन जाहिलों का बाप रख दिया था। यही वो करता था ना, कोई अपना नाम खुद थोड़ी जाहिलों का बाप रखेगा। तो गैर अल्लाह की कराहत दिलाने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम देखो तो सही किसकी इबादत कर रहे हो, किसको पूज रहे हो, ये तो तुम्हें कुछ ना फायदा ना नुकसान कुछ नहीं पहुंचा सकते। वकान अल काफिर अला रब्बिही ज़हीरा, और जो काफिर है वो अल्लाह के खिलाफ काम करने वाला, मदद करने वाला है। काफिर रब के खिलाफ मददगार बना हुआ है, किसका? शैतान का। जहाँ कहीं भी अल्लाह का नाम बुलंद किया जाता है ना, उसको बड़ी चुभन होती है, वो उसकी मुखालफत पे जितनी भी कोशिश हो सकती है वो खड़ा हो जाता है। और आप देखें जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम पहुँचाना शुरू किया था तो कैसे सारे काफिर एक हो गए थे कि बस ये पैगाम ना आगे फैले। वमा अरसलना का इल्ला मुबशिरा व नज़ीरा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि आपका काम इनको, इनसे ज़बरदस्ती डंडे के साथ अमल करवाना नहीं है, बल्कि आपका काम है कि जो निकी का काम करे उसको खुशखबरी दे दें, और जो बुराई करे उसको बुरे अंजाम से डरा दें। कुल मा अस अलकुम अलैहि मिन अजरिन, कह दीजिए और आप इनको साफ बता दें, क्लियर कर दें कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता तुमसे, कोई सिला नहीं चाहता, कुछ से कुछ तुमसे मांगता नहीं हूँ, कोई बदला नहीं मुझे चाहिए कि मैं तुम्हें दावत दे रहा हूँ तो तुम्हें तुम्हें ये बात बुरी लग रही है, लेकिन ये तो सोचो मैं क्या तुमसे कुछ मांगता हूँ, मैं तुमसे कोई सैलरी मांगता हूँ, कोई इनाम मांगता हूँ जो तुम्हें बुरा लग रहा है मेरा ये बताना, मैं तो सिर्फ क्या चाहता हूँ, मेरा अजर क्या है, मुझे और कोई नहीं अजर चाहिए सिवाय एक के, वो क्या है, इल्ला मन शाअ अन यत्तखिज़ा इला रब्बी ही सबीला, मगर सिर्फ एक अजर चाहिए और वो है कि जो चाहे वो अपने रब की तरफ कोई रास्ता बना ले, कि अपने रब के रास्ते पे आ जाए, यही मेरा अजर काफी है, मेरे लिए यही काफी है। अब आप देखें, नबी है या दीन की तरफ दावत देने वाला, देखिए उसकी सोच कैसी होती है और उसका जज्बा क्या होना चाहिए, उसकी नीयत क्या होनी चाहिए। वो लोगों को इसलिए ना बुलाए कि इनसे मैं कुछ बटोरूं, कुछ तोहफे ले लूं इनसे, या ये मेरी बड़ी इज्जत करें, या मुझे कोई बड़ा ओहदा मिल जाए, या मुझे कुछ दें, या कोई मुझे फीस पे करें, बल्कि इसलिए कि लोग अल्लाह के साथ जुड़ जाएं, अपने रब को पहचानने लगे, इसलिए लोगों को नेकी के रास्ते की तरफ बुलाते हैं। और आप देखें, ये दुनिया की जिंदगी में दावत देने वाले के लिए एक बड़ी खुशखबरी होती है और इंसान को बड़े लालच में भी मुब्तला कर देती है कि लोग अल्लाह के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि वो फील करता है कि अगर मैंने इसको नेकी की राह दिखाई और मेरे कहने के ऊपर ये कुछ नेकी का काम करता है, तो जितना अजर इसको करने वाले को मिलेगा उतना ही मुझे भी मिलेगा, ये उसको बड़ा हरीज कर देती है, वो और ज्यादा करना चाहता है। तो वो फील करता है जब लोग अल्लाह की तरफ आ जाते हैं तो उसको इतनी खुशी उससे मिलती है कि उसको ऐसे लगता है अल्लाह ने कबूल कर ली मेरी नेकी, मुझे इससे फायदा मिलेगा, ये जल्दी हासिल होने वाली खुशखबरी है जो दुनिया में ही उसको मिल जाती है। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया और आप पे ये क्लियर, आपको ये कह दिया गया कि आप क्लियर कर दें, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया तो जो भी दावत देने वाला है उसको भी यही समझना चाहिए कि मेरा अजर मेरे रब के जिम्मे है, इसके लिए वो किसी से कुछ ना मांगे ना एक्सपेक्ट करे, कोई चीज डिमांड नहीं करनी चाहिए, मेरा अजर यही है, मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि किसी तरह आप अल्लाह से जुड़ जाएं। और यही बात इसी वजह से मैं आप लोगों से भी हमेशा कहती रहती हूं, इसी आयत की रोशनी में आप माइंड भी करते हैं कई दफ़ा कि मैं तोहफे क्यों नहीं कबूल करती और क्यों आपको मना करती हूँ, हालांकि इसकी वजह और कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कि मेरा अजर मेरे रब के जिम्मे है, दूसरे कि मेरा अजर ये है कि आप अपने रब से जुड़ जाएं। यकीन करें जब आप ये बताते हैं कि हमने फलां आयत सुनी और इस पर यूं हमने अमल किया, तो मेरा दिल इतना खुश होता है कि आप मुझे दुनिया के कीमती तरीन तोहफे भी लाके दे देना, तो उससे मुझे वो खुशी नहीं होगी, ये खुशी नाकाबिले बयान है। तो ऐसे तोहफे मैं ज़रूर कबूल करती भी हूँ और मेरा दिल उनको लेके खुश भी होता है कि जब आप कोई अमल करके दिखाएं, जो सिखाया है उसके ऊपर चल के दिखाएं, अल्लाह के साथ जुड़ें, उसका रास्ता इख्तियार करें, ये बेहतरीन तोहफा। और आप देखें, जब आप किसी को तोहफा देते हैं तो आपका दिल चाहता है ना वही तोहफा दें जो दूसरे को पसंद हो, जिससे वो खुश होता हो। तो मुझे भी यही तोहफा पसंद है कि इंशाल्लाह आप अल्लाह के साथ जुड़ें, यही सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात है। और फिर मुझे ये भी लालच होता है, ये भी हिर्स होता है कि ये अल्लाह के साथ जुड़े तो मुझे 20 का अजर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। वतवक्कल अलल हय्य लज़ी ला यमूतु, और इस रास्ते में जब आप अल्लाह के दीन का काम कर रहे हो ना, तो इस रास्ते में किसके ऊपर तवक्कल करना है, किसी पे तो इंसान को भरोसा करना होता ना, किसी मर जाने वाले पे नहीं करना, अगर उस पे तवक्कल करोगे तो वो तो फना हो जाएगा, तो आप तो बड़े नुकसान में रहे, ऐसे पे तवक्कल करो जो हय और कयूम है, ला यमूतु, जिसने मरना नहीं है, वसब्बिह बिहम्दिही, उसकी तस्बीह करो उसकी तारीफ के साथ। देखिए भरोसा सिर्फ उस पे होना चाहिए जो जिंदा है, जिसको कभी मौत नहीं आएगी, मसलन आपने अपनी हिफाजत के लिए गार्ड रखा और भरोसा उस पे कर दिया कि अब गार्ड है ना तो मेरी हिफाजत होगी, अब मुझे कोई नहीं मार सकता, तो कोई आया और उसने गार्ड को मार दिया, तो अब आप क्या करेंगे? आपने जिस पे भरोसा किया वो तो मर गया, तो असबाब तो इख्तियार करो, असबाब इख्तियार करने में कोई हरज नहीं है, मगर भरोसा सिर्फ अल्लाह पे करना है कि उसके हाथ में मेरा काम है, जिसको कभी मौत नहीं आएगी। आपने मसलन बेहतरीन अपना लॉयर किया अपने केस के लिए, और भरोसा किया कि बस मैंने इतना महंगा लॉयर कर दिया ना, अब तो मैं मुकदमा जीतूंगी जीतूंगी, अब वो लॉयर ही मर गया, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप इस पे भरोसा करेंगे? आपने अपने जिस्म पे भरोसा किया कि ये जिस्म है ना, तो मैं ये काम करके दिखा सकती हूँ, मैं ये काम कर लूंगी क्योंकि मेरे पास ताकत है, और देखो मैं कैसे कैसे करती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ही करती रही हूँ, तो मुझे तो पता ही है, मुझे तो ये आता ही है। तो अपने ऊपर भरोसा किया, अपने टैलेंट पे भरोसा किया। अगले दिन आप सुबह को उठे काम करने के लिए, आपको बुखार चढ़ा हुआ था, आप उठ ही नहीं सके, बिस्तर से हिल ही नहीं सक रहे थे, क्या हुआ आपके भरोसे का? आप कहती हैं मैं पुलाव बहुत मज़ेदार बनाती हूँ, मैं इतना मज़े की फलां चीज़ बनाती हूँ, बिरयानी मेरे हाथ की आप खाएंगे ना, इतनी मज़े की होगी ना, खुद पे बहुत बड़ा भरोसा किया ना, अगले दिन आप बनाने लगी वो ही उसी दिन ही खराब हो गई। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने भरोसा अपने ऊपर नहीं करना, तवक्कल अपने ऊपर ना करें, जब भी किसी काम में भी भरोसा करें तो अल्लाह की ज़ात पे करें, वो करवा देगा तो वो चीज़ हो जाएगी, वो ना करवाए तो मेरी क्या ताकत। जब कोई चीज़ हमेशा जिंदा नहीं है, जब कोई चीज़ ताकत नहीं रखती, तो भरोसा फिर कैसे उस पर कर सकते हैं? भरोसा फिर उस पर करें ना जो हमेशा जिंदा है, जिसमें सारी ताकत है, सारी कुदरत है। काम करें, असबाब भी इख्तियार करें, मगर आपका ट्रस्ट अल्लाह पे होना चाहिए। आप गाड़ी में बैठ गई है ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे, आप ये कहेंगे अल्लाह गाड़ी में तो बैठ गई, मुझे मंजिल तक पहुंचाना तेरा ही काम है, तू चाहेगा तो गाड़ी पहुंचा देगी, तू नहीं चाहेगा तो नहीं पहुंचाएगी। अल्लाह मैंने ये दवा खा तो ली है, मगर अल्लाह दवा ने मुझे ठीक नहीं करना, अल्लाह दवा में क्या ताकत है? मेरा भरोसा तो आपके ऊपर है, आपने करना है। ये कितनी प्यारी आपको बात बताती हूँ, आप भरो तवक्कुल के ऊपर ना, आप इंशाल्लाह इस बात को सुनेंगे, आपको भी अच्छी लगी लगेगी, और आपको तवक्कल कभी भी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। पता है तवक्कल कैसा है? आप एक बच्चे से सीख सकते हैं, एक छोटे बच्चे को आप देखिएगा, वो अपनी माँ पे तो तवक्कल करता है ना, माँ को ऐसे समझता है कि बस माँ मेरी हर तकलीफ को ख़त्म कर सकती है, हर मसले को हल कर सकती है। तो क्या होता है, हर बात की शेयरिंग वो माँ से करता है, चोट लगती है तो रोते हुए माँ के पास भागता है, अगर डर लगता है तो माँ के पीछे जाके छुप जाता है, कोई खतरा महसूस होता है तो तब भी माँ की गोद में सर डाल देता है, अगर कुछ मांगता है तो तब भी माँ से ही कहता है, किसी और से भी चीज़ चाहिए होती है ना तो उससे भी मांगने में शर्माता है ना, माँ को जाके कहता है कि मुझे वो चीज़ चाहिए। ये है तवक्कल, तवक्कल आप इसे सीखें, हर मसले के हल के लिए अल्लाह के पास, हर तकलीफ के लिए अल्लाह के पास, हर चीज़ मांगनी है तो अल्लाह से मांगनी है, अब मुझे ये पता है कि पूरा कर सकता है तो अल्लाह ही पूरा कर सकता है। अच्छा, हालांकि माँ के अंदर ताकत कोई नहीं होती, वो बच्चा समझता है कि माँ पूरा कर सकती है, उसको लगता है कि माँ कोई सुपर वूमेन है, वो हर चीज़ माँ कर सकती है ना, हालांकि तो माँ है वो तो बेचारी कमज़ोर है, और हमारा रब तो सारी कायनात का मालिक है, कुदरत रखता है हर चीज़ की, हम क्यों नहीं रोते हुए उसके पास चले जाते, हम क्यों नहीं उसके पास जाके छुप जाते जब हमें खतरा महसूस हो, हम क्यों नहीं जब हमें डर लगे तो हम क्यों नहीं उसके पास भागते, क्यों नहीं जब हमें कोई परेशानी होती तो हम उसके पास भाग के जाते, अल्लाह ये परेशानी है, जब कोई चीज़ चाहिए होती तो उसको क्यों नहीं कहते, अल्लाह ये चीज़ चाहिए मुझे, उससे तो कहते हुए भी शर्म आती, अल्लाह मैं तुझे कह रही हूँ मुझे बस वो चीज़ चाहिए। हाँ, आप नन्हे बच्चे से सीख सकते हैं तवक्कल करना, तवक्कल तो उस पर करो, वो तो ना सोता है, ना वो कमज़ोर है, ना उसको कभी मौत आनी है, उस पर भरोसा करो, बाकी सबने तो मर ही जाना है, ताकतें भी ख़त्म हो सकती हैं, लोग भी मर सकते हैं, लोग कहीं जा भी सकते हैं, ऐसों पे क्या भरोसा करना जिनका कोई पता ही नहीं है, आज हैं तो कल ना हो, अपनी ज़ात पे भी ना भरोसा करो, ये खुद को इन पावर समझने शुरू हो जाए, मैं इन कमांड हूँ, और फिर हम बड़े रिलैक्स्ड हो जाते हैं ना कि मैं बस ये कर सकती हूँ, मैं तो रोज ही करती हूँ, आज भी कर लूंगी, कैसे आपने अपने पर भरोसा कर लिया? तो अल्लाह के ऊपर भरोसा करो, और ख़ास तौर पे जब दीन का काम करने लगो ना, यकीन करें कई दफ़ा ऐसा होता है ना, जब मैं कहीं जाने लगती हूँ किसी लेक्चर के लिए, पूरी तैयारी भी होगी, तो मैं अपने आप के अंदर ही कहती हूँ कि अल्लाह ताला यहाँ तक तो मैंने कर लिया, अब ये तेरा ही काम है, तूने ही करवाना है। बुलवाना तो अल्लाह का काम है कि वो क्या बुलवाता है मुंह से। तब यही दिल दिल के अंदर बात आ रही होती है, अल्लाह तेरे ऊपर ही भरोसा किया, क्योंकि जितनी मर्जी तैयारी कर लूँ, इतनी जितना तूने मुझे इख्तियार दिया था उतनी तो मैंने कोशिश कर ली है, आगे तेरा काम है, आगे तेरे ऊपर छोड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह के ऊपर छोड़ते हैं इस तरह से, तो अल्लाह ताला की ज़रूर मदद आती है, और अल्लाह ताला खुद ब खुद बुलवा देता है फिर। तो हर काम में इस तरह ज़रूरी है, बीमार हो ना तब भी अल्लाह के पास जाएं, ये समझे ना कि उसने देना है। देखें आपसे ज़्यादा तो ये बच्चा छोटा अच्छा है, उसको नहीं, उसको हालांकि माँ नहीं उसको ठीक कर सकती, लेकिन वो जा जा के माँ को बताता है सर में दर्द है, अब ये है अब वो है, उसके पास जा जा के रो रो के बताता है, हालांकि माँ क्या ठीक कर सकती उसके सर दर्द को, माँ पेट में दर्द दूर कर सकती? नहीं, हम क्यों नहीं जाके कहते, उसी ने करना है। और दवा में भी ताकत डालेगा तो वो ही डालेगा। वकफा बिही बिज़ुनूबि इबादिही खबीरा, और काफी है उसको अपने बंदों के गुनाहों से बाखबर होना। यानी क्या मतलब हुआ, हमने ये नहीं देखना कभी भी फलां क्या कर रहा है, वो ये कर रहे हैं और वो ये कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं वो वैसा कर रहे हैं। अल्लाह काफी है ना अपने बंदों के गुनाहों पे नजर रखने के लिए, आपको क्या जरूरत है कि आप नजर रख रहे हैं कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा। आप अपना काम करें ना जो आपको करने को कहा गया, आप अल्लाह का पैगाम पहुंचा दें, बाकी अल्लाह पे छोड़ें, वो खुद ही नजर रखेगा। और वो नजर रखे हुए है कि मेरे बंदे क्या कर रहे हैं, कौन छुप के क्या कर रहा है कौन सामने। हम टो में हर वक्त लगे रहें, हम हर वक्त यही चेक करते रहें किसने क्या किया, वो गलत कर रहा है और वो ये कर रहा है और वो कर रहा है, वो जाने और अल्लाह जाने। वो अपने बंदों की खबर रखने के लिए खुद काफी है। अल्लज़ी ख़लक़ समावाती वल अर्द वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। ये हम पहले भी कई दफ़ा ये बात पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, 6 दिनों में पैदा किया, फिर अल्लाह ताला अर्श पे मुस्तवी हुआ। कैसे हुआ ये मैंने आपको बताया कि हम नहीं जानते, अल्लाह ताला को बेहतर मालूम है कि ये किस तरह से इसकी कैफियत है। और रहमान, वो रहमान है, फ़सअल बिही खबीरा, अगर इसके बारे में जानना चाहते हो ना, रहमान के बारे में, उसकी रहमतों के बारे में, वो कैसा है, तो किसी जानने वाले से पूछो। जैसे खुद जाहिल हैं वैसे ही अपने जैसे जाहिलों से अगर पूछते रहेंगे तो वो क्या आपको बताएंगे, तो उससे पूछो जो इल्म वाला है, जो जानने वाला है, जो खुद रहमान की पहचान रखता है। वह इज़ा क़ीला लहुम उस्जुदू लिर्रहमान क़ालू वमर रहमान, जब उनसे कहा जाता है ना रहमान को सजदा करो, अल्लाह के आगे सजदा करो, ये काफिरों से कहा जाता था कि रब के आगे सजदा करो, आओ झुक जाओ उसके आगे, तो कहते थे कौन रहमान, हम तो नहीं रहमान को जानते, क्योंकि उनके यहाँ वो लोग अल्लाह ताला को रहमान के नाम से नहीं पहचानते थे, वो अल्लाह को रहमान नहीं कहते थे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सुलह हुदैबिया वाले साल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह नामा लिखवाया था हुदैबिया के मकाम पे, तो फरमाया था बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखो, तो मुशरिकीन ने कहा ना तो हम रहमान को जानते ना रहीम को, आप बस बिस्मिकल्लाहुम्मा लिखें। तो हम पढ़ भी चुके ना कि अल्लाह कहो या रहमान कहो, जिस नाम से भी चाहोगे चाहो पुकारो, उसके सारे ही अस्माए हुस्ना है, बेहतरीन नाम उसी के, रहमान भी वही है और अल्लाह भी वही है। तो वो कहते हैं कौन रहमान, हम नहीं रहमान को मानते, हम नहीं जानते। अनसजुदु लिमा तअमुरुना, क्या हम सजदा करें उसको जिसको तू हमें हुक्म देते हैं, जिसको तुम कहोगे, क्या हम उसके पीछे ही चल पड़े, उसको ही सजदा करना शुरू हो जाए। वज़ादा हम नुफूरा, और जितना इनको कहते जाते हैं उतना ही ये नफरत में बढ़ते जाते हैं, जितना इनको बुलाते हैं इस तरफ उतना ही ये भिदकते हैं, उतना ही भागते हैं। लेकिन अफसोस है कि आज मुसलमानों के अंदर भी ऐसे लोग हैं कि जब कहा जाए कि आओ सजदा करो रहमान के सामने, तो वो कहते हैं क्या नमाज, नमाज की तरह बुलाना, लो अब तुम जो कहोगी वो ही हम करना शुरू कर देंगे। जाहिर है जब रहमान को जानते ही नहीं है तो सजदा करना भी मुश्किल होता है, और जितना बुलाते हैं उतना ही भागते हैं, तो काफरों की बात है और आज मुसलमानों के घरों में भी यही हो रहा है। और वो रहमान कैसा है उसकी हमने कदर नहीं पहचानी, हम उससे भागते हैं जो हम पे इतना मेहरबान है, जो इतनी सारी रहमतों के साथ हमें ढांपे हुए, उसकी रहमत ही है कि हम चल फिर रहे हैं, उससे भागते हैं, उसकी तरफ नहीं आना चाहते, उसकी बात ना मानना नहीं चाहते, उसके मुकाबले में अपनी ख्वाहिशात को तरजीह देते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इंशा अल्लाह तआला इसकी तिलावत सुनेंगे और फिर आप सजदा करेंगे इंशा अल्लाह तआला।
ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبد مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر قل ما أسألكم عليه من أجر إلا ما شاء إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا.